October 12th, 2006, evening class, Karthik.
Patitanam pamaya vaishnavibhyonam namo mahavadanyaya krishna suprema pradayate krishna krishna svetanya namne gaurakise गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अंगश्यामजिं सदा निरन्तरं मन्दे कृतेन्दीवरं जड्जञ्जाकुतरोत्सङ्गविदधतं पट्टम्बरस्य सिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलकुलं नायिनं माधुर्यकादम्बिनी কালকে বলেছিলাম কৃষ্ণ স্বপ্রকাশ, যখন তিনি কৃপা করেন তখন ভক্তগণের ইন্দ্রিয়কে নিজেকে প্রকাশ করেন, যেরকম স্বেচ্ছাপূর্বক যদুকুলেতে কৃষ্ণরূপে আর রামচন্দ্র রূপেতে রঘুকুল মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভক্তিদেব স্বয়ং প্রকাশ, ভক্তি মানে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সেবা সর্বাধিক ব্রজবাসী গণের, তার মধ্যেও আবার দাস সক্ষ পার্থন তদপেক্ষা গোপীগণ, তার মধ্যেও আবার শ্রীমতী রাধিকা। রাধিকা যেরকম কৃষ্ণের সেবা করেন অন্য কেউ করতে পারে, সে রাধিকা দেবী কৃষ্ণের লাগনী শক্তি, তিনি ভক্ত। তো তিনি স্বয়ং প্রকাশ, সর্বশক্তিমান ভগবানের মতো उनकी स्वरूप शक्ति भक्ति भी स्वयं प्रकाश। जब वो देखती है कि हमको प्रकाशित होने की जरूरत है तो वो प्रकाशित होती है। उनकी प्रकाशता की सिद्धि के लिए अन्य कोनो कारण अपेक्षा नहीं। भागवत बोला से যত ভক্তির অধ্যক্ষ যে অপ্রতিহতা কোনো প্রতিবন্ধক যেখানে তাই ধারাবত অবিচ্ছিন্ন গতি অধ্যক্ষ ভগবত ভক্তি বিনা কৃষি কারণকে স্বয়ং উদিত হতি হয় ভক্তি দেবী স্বয়ং উদিত হয়। আরো অন্যত্র শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে যদিচ্ছায়া মত কথা দো, মেরি স্বরূপ শক্তি ভক্তি কি কৃপা হি সে হি মেরি লীলা কথা মে রুচি উৎপন্ন হচ্ছি মদ ভক্তি চ যদিচ্ছায়া, সর্বত্র যদিচ্ছায় উপচিতা সর্বত্রই ভক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে স্বপ্রকাশ বিনা কারণ প্রচন্ড রূপে উদিত হওয়া করতে। ভগবান যে প্রকার স্বেচ্ছাপূর্বক যদুবংশ মে কৃষ্ণ আর রঘুবংশ মে রাম আদি কে রূপ মে আবির্ভূত হতে হয়, প্রকট হতে হয়। আর পুনঃ ভক্তো কি অন্তর ইন্দ্রিয়, ভক্তগণের অন্তর ইন্দ্রিয়তে আর বাহের ইন্দ্রিয় স্বেচ্ছা রূপ স্ফূর্তি অথবা অনুভূত হতে উসি প্রকার সচিদানন্দ রূপা উনকি স্বরূপ শক্তি সব প্রকার ভক্তি ভি স্বেচ্ছা সে হি ভক্তকে অন্তর ইন্দ্রিয় আর বহির ইন্দ্রিয় স্ফূর্তি যা অনুভূত হতি কিছু কারণ কি অপেক্ষা নেই রাখতি ভক্তি কৃষ্ণের মতো সচিদানন্দময় গোপাল তাপনের উপদেশে বলা হয়েছে বিজ্ঞানানন্দ ঘন আনন্দ ঘন সচিদানন্দই করসে ভক্তি যোগে সৃষ্টি जो विज्ञान और आनंद की घनी गोष्ठी होती है वही श्री कृष्ण सचिदानंद रूपा भक्ति योग में प्रकाश पाते हैं। यदि भक्ति सचिदानंद ना हो तो कभी भी भगवान उसके वशीभूत नहीं होते, इसलिए भक्ति सचिदानंदमयी है। जनेन्द्रियों के भक्तों के जड़ इंद्रियों में कैसे प्रकाशित होती है, जैसे ज्वलंत आग में तपकर लोहे का एक टुकड़ा लाल हो जाता है और आग जैसा हो जाता है और दहन करता है, ठीक भक्ति भी भक्तों की इंद्रियों में तदात्म होकर जड़ी इंद्रियों में भक्ति प्रकाशित होती है और उनके जड़त्व को ध्वंस कर अपनी भांति सच्चिदानंदमयी बना देती है। यदि कहो जो भक्ति स्वप्रकाश है तो भगवान की कृपा से ही भक्ति प्रकाशित होती है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते भगवान की कृपा से, क्योंकि भक्ति ही तो स्वप्रकाश है, भगवान की इच्छा जान करके वो अपने प्रकाशित हो सकते। यदि कहो उत्तम आदि भक्तों के कृपा से प्रकाशित होती है तो ऐसा भी नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति को इसलिए स्वप्रकाश नहीं कर सकते कि यदि भगवान यदि कृपा करेंगे तो पक्षपात हो जाएगा। भगवान उस पर भक्ति दे करके करते हैं कृपा करके और उस पर नहीं करते, भगवान में पक्षपात का दोष हो जाएगा। और दूसरी तरफ भक्तों के तरफ में भी जैसे नारद इत्यादि भक्त हैं तो उनके कृपा में भी ये बात आएगी कि उन पर कृपा नहीं किया इस पर कृपा किया, किंतु शास्त्रों में ऐसा कहा गया है भगवान के प्रति प्रेम भक्तों के प्रति मैत्री भाव और बालिशों के ऊपर में कृपा और जो भगवत विद्वेष है उनके प्रति उपेक्षा, ये मध्यम भक्तों के अधिकार का कार्य। जो मध्यम भक्त है इसलिए वे बालिशों के ऊपर में कृपा करके भक्ति जो देते हैं या उनका पक्षपात नहीं, इसलिए भक्ति कैसे होती है, ऐसे मध्यम अधिकारी लोग सब लोगों को बुलाकर और उनको भक्ति प्रदान करते, क्योंकि इनका अधिकार है देने का। जब वो देंगे तो हो सकता है कि भगवान की भी कृपा हो, किंतु भक्ति असल में मध्यम भक्तों के कृपा से ही
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Therefore, continuing Sri Vishnu Chakravarti Thakur's Simadurja Kadambini. Therefore, conclusion is that Krishna is Swaprakash. He is independently manifested or self-manifested. He is Swaichapurva. His desire is also independent. Therefore, when Krishna desires, then we can say that bhakti may enter the heart of the devotee and reveal his name, form, qualities and pastimes. Sri Ram manifested himself in the Raghu dynasty, and Krishna manifested himself in the Yadu dynasty. Therefore, and to display, to manifest, what is bhakti? Therefore, like Bhagavan is independent, bhakti is also like of the same nature. It is also Swayam Prakash. She manifests according to her own desire. She is not dependent upon anything. Therefore, what is bhakti? In a simple way, we say bhakti is seva. And the topmost limit of that tendency to perform service to Krishna is found in a very natural way in the Brijvasis, who serve Krishna especially in four rasas of Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhuras. And of all the Brijvasis, Srimati Radhika serves, her service is of the topmost limit, the topmost quality. Therefore, when necessary, he manifests himself, and when necessary, he manifests the devotion in the heart of the devotee. Therefore, Krishna is not independent, his bhakti is not independent. Krishna is independent, his bhakti is independent, and his devotee is independent. These three things. Therefore, bhakti must of itself be of the nature of having no material cause and flowing in an unbroken chain. Yatir bhakti adoksaja. Savai pum samparo dharma yatir bhakti adoksaja. Ahoitiki means no material cause apityatma. And unbroken like a flow of oil from a jar. Therefore Bhakti Devi, she is independent because she is Krishna's own Swarup Shakti. Therefore that Swarup Shakti, Krishna's own energy, she gives ruchi, taste in hearing Harikatha. Therefore, bhakti is dependent on Krishna only, nothing else. How bhakti manifests on the internal and the external senses of the devotee. How Krishna manifests his name, form, qualities and pastimes to the devotee. Therefore, the Gopal Tapani Upanishad says that bhakti, she is Sachidananda Moy. She is also of the same nature as Krishna. Otherwise, if she has an immature quality, then how she can control Krishna? Therefore, like Krishna is Sachidananda Moy, Sachidananda, then Bhakti Devi is also Sachidananda Moy. She has the same nature. Then, one may say, but the senses of the devotee are material, then how Bhakti can manifest to the material senses of a devotee? The example is given like in putting a piece of iron into fire. That iron will become tadatmik with the fire and attain the qualities of the fire by association. So as bhakti manifests on the senses, internal and external senses of the devotee, then the material quality of those senses is destroyed and the senses of the devotee become the same as Krishna's senses. Then one can realize Krishna's nature. Then some question may come. But if bhakti is independent, then bhakti must be dependent upon Krishna, because nothing is independent of Krishna. The answer is no. Bhakti is not dependent on the mercy of Bhagawan. Because Bhagawan's mercy is for everyone, therefore it's not that Krishna gives mercy to him and not to him. Otherwise the fault of Pakshapat, the fault of partiality will come in Krishna. Therefore that fault is not there. Then someone may say, but bhakti is dependent on the mercy of a devotee? The answer is also no. Because Uttam Bhakta. Because Uttam Bhakta is equal to everyone, therefore bhakti is also not bound by his mercy. Otherwise he may also have be criticized for having partiality. Therefore the conclusion is that bhakti is attained by the mercy of a Madhyamadhika. He has the adhikar or the qualification to distribute that bhakti. Because he has prem towards Bhagawan, Ishwara Tata Denishu. He has friendship to those on the same platform as him. Kripa Maitri, friendship. To those who are less than him. Kanishtha Adhikari, that Madhyam Adhikari gives mercy. And to those who are envious, that Madhyam Adhikari will avoid them. Therefore these four symptoms are present in the Madhyam Adhikar. Therefore by the association of such a Madhyam Adhikari one achieves bhakti, there is no other cause.
Jatricha sabde vyakha jadi bola jaye kono bhagya dwara ভক্তি হয় যদি মানা যায় তাহলে ভাগ্য কি সৎকর্ম দ্বারা শুভ কর্ম দ্বারা একটি ভাগ্যে উদ্দীপ্ত যদি ওই শুভ কর্মের দ্বারা ওই ভাগ্যকে স্বীকার করা যায় তাহলে ভক্তি শুভ কর্মের অধীন হয়ে গেল ऐसी दशा में भक्ति में कर्म की परतंत्रता का दोष स्पष्ट करता है शुभ कर्म ना होले ताले भक्ति हो वो ना ताले जो शुभ कर्म अधीन भक्ति है सभी शास्त्रों में भक्ति को स्वप्रकाश कहा गया है इसलिए यह ठीक नहीं सभी श्रुतियों स्मृतियों में भक्ति को भगवान की भक्ति सच्चिदानंद और स्वरूप शक्ति की वृत्ति कहा गया अतः भक्ति को परतंत्र मानने से उसकी स्वप्रकाशिता को अस्वीकार करने श्रुति वचनों की अवहेला जनित अपराध हो जाएगा द्वितीय यदि उस भाग के नापि अति भाग्य न यदि उस भाग्य को शुभ कर्मों के अभाव के जनित कहा जाए तो ऐसा होने पर भाग्य उदय होने का कारण अज्ञात है वह भाग्य भी असिद्ध हो जाता है जो स्वयं असिद्ध है वह किसी दूसरे का कारण कैसे हो सकता है और तृतीय यदि भगवान की कृपा को ही उस भाग्य का उदय बतलाया जाए तो उनकी कृपा प्राप्ति का कारण क्या है फिर उसका कारण क्या है उत्तरोत्तर कारण ढूंढने पर कोई निश्चित अवस्था न होने से अनवस्था का दोष स्पष्ट होता है इसलिए यह भी ठीक नहीं चतुर्थतः भगवान की हैति की कृपा को ही यदि भाग्य मान लिया जाए तो भगवान की कृपा ही यही है उसी से भक्ति हो गई तो उस हैतु कृपा से सभी जीवों को भक्ति लाभ करने का सौभाग्य करना उचित सभी जीवों को क्यों नहीं भाग्य हुआ भगवान की कृपा उसी के ऊपर में क्यों हुई ये भगवान पर निष्पक्षता का कुछ आरोप लगता है जो निष्पक्ष नहीं है क्यों एक को दिया दूसरे को नहीं दिया यदि कोई कोई भगवान में विषमता का दोष नहीं क्योंकि ये भक्तों का पालन करते हैं असुरों का संहार करते हैं तो उसके उत्तर में करते हैं दुष्टों को दमन करने में और अपने भक्तों को पालन करने में भगवान की जो विषमता देखी जाती है वह दोष नहीं बल्कि उनका महान भूषण है या उनके महान गुण का ही परिचय है, क्योंकि भगवान में भक्त वात्सल्य गुण अनन्य समस्त गुणों से ऊपर विराजमान रहता है। विशेषतः असुर के संहार में भी भगवान की कृपा होती है, उनको कहां मुक्ति देते हैं संसार से, क्योंकि भगवान उनके भक्तों के विद्वेषों के फलस्वरूप असुरों की आत्मा अनंत काल महादुखमय नरक आदि का भोग करेगी, वे कभी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान कृपा करके संहार के बहाने योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उनको प्रदान, ये भगवान की भी कृपा है। इसलिए सब विचार करके यही बतलाया गया भगवत भक्त जो मध्यम कोटि का उत्तम नहीं मध्यम कोटि का है वो भगवान के प्रति मैत्री कृपा, वैष्णव के प्रति संभव मैत्री। मैत्री भी तीन प्रकार की, अपने से उत्तम यदि वैष्णव है श्रद्धा युक्त मैत्री होती, बराबर वालों के प्रति यथार्थ मैत्री, और अपने से कम वालों पर उनको संग दान करके उनको भी उत्तम करने की, और जो बाजी सत्ता श्रद्धालु है मायावाद का दोष जिसमें नहीं है ऐसे श्रद्धालु साधकों को कृपा करके ये भक्ति देते। इसलिए अंत में यही निर्णय हुआ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भक्तों की करुणा से ही कृपा से ही भगवत भक्ति होती है। दोष इसलिए नहीं है कि मध्यम भक्त कहां से देता है भक्ति, क्योंकि उनके अंदर में भक्ति है, उसी भक्ति को दूसरों के हृदय में संचित करते हैं, इसलिए इनकी कृपा में दोष। यू कैन ट्रांसलेट।
सो दैट वाज वेरी फास्ट, आई कुड नॉट कैच एवरीथिंग। गुड आफ्टरनून. You can say again these three faults. What? Ekshubh, Karmaka. The three things I could not catch the second one. No, yeah, well, I'm here, beginning. Shubh Karma, iske baad. Very fast.
Shubh Karma, ke dwara bhagya.
Nahi ho.
Na Shubh Karma ke abhav ke dwara bhagya.
Hare Krishna. So the Guru was discussing how to get bhakti. As before, Sri Gurudev told, bhakti is completely independent. He never under control by any karma, it is subha karma and adhar karma. So Gurudev has given four reasons. What is that? Sri Vishwanatha Thakur has told, yadri chaya means, if Sri Vishwanatha Thakur is explaining that if bhakti comes due to some good fortune, is it okay or not? Srila Chakravarti Thakur is telling by himself that if somebody can consider that by Subha Karma bhakti is manifested somebody's heart, by good karma is bhakti may manifest somebody's heart, or by the absence of bad karma bhakti may manifest, then it is is not correct. Why not? If so, then bhakti is completely controlled by karma. But by karma, good karma, you can get some good fortune. By that good fortune, by that subha karma, bhakti not possible, because then bhakti will be controlled by, under control by subha karma, but it's not possible, because bhakti is completely independent. He never be controlled or dependent by subha karma. The second one, if somebody can address this question, that the absence of subha karma, then some good fortune will come. If by that bhakti will come, but it is not correct also. Why not? So that how that fortune is coming, his cause is not known by anyone. So when he is imperfect by himself, then how he can make perfect to others? So absence of subha karma is not possible to arise bhakti also. The third one, if Bhagavad Kripa, if somebody thought that by the mercy of Bhagavan someone can get bhakti, that is not possible also. Why not? Because the Gurudev chose, then one fault will come called anavastha, because Bhagavan is equal to all. So if he bestows mercy for bhakti and for someone not, then partiality comes for Bhagavan. So by the mercy of Bhagavan, bhakti will not arise. Now the fourth one, if Bhagavan, why not? Because we have seen sometimes Bhagavan is giving mercy to someone and someone he bestows mercy. Who is able person, Bhagavan giving punishment to them, and who is not able, Bhagavan is bestows mercy. But this is Bhagavan's own quality, is bhakta vatsal, is controlled by his devotee. Then how bhakti is possible? Only by the mercy of his devotee. Devotee also three types: uttam, madhyam and kanishtha. By the mercy of uttam bhakta, bhakti is not possible. Why so? Because uttam bhakta equal to all. It mentioned in Gita, the sunichaiva sapakecha brahmaniha vigasthini, by this law, the uttam bhakta is equal to all, and Bhagavan also. So by the mercy of uttam bhakta, devotion not possible, bhakti not possible. By kanishtha bhakta, not possible at all. Then how it is possible? Only by madhyam bhakta. The quality of madhyam bhakta is mentioned in scripture. Isvare tadadhineshu valiseshu disatsucha prema maitri kipapeksha jakarati sa madhyama. The madhyam adhikar, madhyam bhakti has some quality. Isvare means in God, what he has prayed. The madhyam adhikari has prayed for Bhagavan, and maitri means friendship for devotee, and mercy for who is junior to him, but he is completely divided from Mayavad, and who is against the devotee, for them he neglects. So this four quality of madhyam bhakta. So if madhyam bhakta bestows mercy, then fault will not come in him. So only by madhyam bhakta